ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि भगवान कृष्ण तभी ये विभाग में गौचारण कर रहे थे, तो उस समय उस गौचारण के समय पर एक बहुत भयंकर बड़ा विशाल बैल यहाँ पर आया। वो बैल की पूंछ आकाश में बादलों को यहाँ वहाँ कर रही थी। उस बैल के चलने के आने से जिस तरह से वो दौड़ के आ रहा था, धरणी कंप हो रहा था। अर्थक्वेक्स, नॉट वन, एवरी थंप वॉज क्रिएटिंग अर्थक्वेक एक ही साथ में। और उसके नाक में से जो हवा निकल रही थी वो तूफान की तरह यहाँ पर, आंधी की तरह उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा था। सो ह्यूज, ही वॉज पोरिंग फायर फ्रॉम हिज आइज, उसके आँख में से सनसनी खेज अग्नि आ रही थी, इतना क्रोध आ रहा था उसको। और वो, उसका ध्यान कृष्ण की ओर था, और वो कृष्ण के ऊपर आकर दो पैरों से हमला करता है और कृष्ण गिर जाते हैं, फिर उठते हैं और इस बड़े विशाल बैल के दो पैरों को पकड़कर पीछे वाले उसको गोल गोल आकाश में घुमाते हैं। तब एक ही साथ में आकाश में घुमाते घुमाते उसके स्टूल और यूरिन दोनों निकल जाता है और वो प्राण त्याग देता है। फिर भगवान को जमीन पर पटक देते हैं। इस तरह से उस बैल की, इसका नाम था अरिष्टासुर, उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी भागवत में इसका बहुत सुंदर लंबा वर्णन दिया है कैसे भगवान का उसका युद्ध हुआ और कैसे भगवान ने उसको मारा। एनीवेज, पॉइंट इज दैट सबके सामने बैल का आतंक हुआ, और जब बैल आया तो उसके भयंकर घटनाओं से जो भी हो रही थी, भूकंप, तूफान, आंधी, जिस तरह से आकाश में हलचल मच रही थी, तो वो देखकर कई प्रेग्नेंट गोपियों के अबॉर्शन हो गए। इतना भयंकर सीन था। ब्रज में ऐसा है ना कि ब्रज में रहना इतना आसान काम नहीं है। श्री कृष्ण के होते हुए भी यहाँ पर रोज होता था। हाँ, बाद में श्री कृष्ण उसको मारते थे और उसका इलाज करते थे, लेकिन तब तक तो लोगों को सहना पड़ता था ना कि यही, जब तक हम भौतिक दुनिया में हैं तब तक आतंक यहाँ चलते रहता है। यू आर नेवर फ्री। भगवान भी आपके समय पर यहाँ पर लीला करते होंगे, तभी ब्रजवासियों को बहुत कष्ट हुआ। देखो ना, अभी कभी पुतना आ रही है, कभी जहर पिला रही है, कभी शक्टासुर आ रहा है, कभी हवा बन के कोई डेमन आ रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम कौन से रूप में आएगा। पहले सुंदर कन्या बन कर आई है, बालक को विष पिला दिया, केवल कृष्ण को नहीं पिलाया, हजारों बालकों को मार दिया उसने पहले कृष्ण को मिलने के पहले। उसका वही मिशन था, 10 दिन में जितने बालक जन्मे हुए हैं वो सबका वध करना है। इसका मतलब सबके बालकों का वध होते 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 सब मर गए, वो लास्ट कृष्ण थे जिसने उनको मार दिया। तो कितनी माताओं को बच्चों के वियोग का दुख हुआ ना। फिर शक्टासुर आया तो कम से कम ओनली कृष्ण का उसमें संबंध था। तृणावर्त जब आया तो इतनी बड़ी आंधी, इतना बड़ा तूफान कि सब कुछ अंधेरा हो गया दिन में, और कौन सी चीज़ कहाँ उड़ रही है, किसकी बैलगाड़ी कहाँ उड़ रही है, किसका घर का छप्पर कहाँ उड़ रहा है, किसके बैल और गाय कहाँ उड़ रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा था, इतना भयंकर तूफान। तो उसमें फिर कोई घोड़ा बनकर आया, कभी गधा बनकर आया डीमन, कभी बैल बनकर आया, इस प्रकार से रोज का आता। कभी वर्षा हो रही है, कभी व्योमासुर बच्चों को उठा के ले जा रहा है, कभी देवता आके वर्षा कर रहे हैं, कभी देवता आके बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं। मतलब यू नो, हर प्रकार की वैरायटी ऑफ ट्रबल्स, कोई यू कांट प्रेडिक्ट कि कल क्या होगा। आज बैल आया तो कल कौन आएगा पता नहीं, और किस प्रकार से आएगा, और बांधी आएगी, तूफान आएगा कि वर्षा गिरेगी कि क्या होगा, नोबडी नोस। तो उसमें कई गर्भवती गोपियों के गर्भपात हो गए, फिर भगवान ने उसको मारा है। जब भगवान ने उसको मारा है और तब वो गोपियों को मिलने आए, तो गोपियों ने कहा हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने धर्म के प्रतीक बैल को मारा है। ठाकुर जी कहते हैं अरे नहीं, वो राक्षस था, वो तो धर्म का प्रतीक नहीं था वो। बोले हम नहीं जानते, हम जानते हैं कि गाय और बैल हमारे पूजनीय हैं और बैल धर्म का प्रतीक है, उसके चार पैर धर्म के स्तंभ होते हैं, दया, तपस्या, शुचि और सत्य। दया मर्सी, जो हिंसा को रोकने से हम दया को पैदा कर सकते हैं। हिंसा रोकेंगे और हिंसा से बना हुआ मांस खाना छोड़ देंगे तो क्रूरता नष्ट होगी, हिंसा नष्ट होगी और दया का निर्माण होगा। व्यभिचार छोड़ेंगे, शादी के बगैर संबंध करना छोड़ देंगे तो अशुद्धि नष्ट हो जाएगी और पवित्र का निर्माण होगा। वो क्या हुआ, शुचि कहते हैं उसको संस्कृत में। तीसरा क्या है, तपस्या। नशा करने से तपस्या करने की शक्ति नष्ट हो जाती है, तो नशा करना छोड़ देंगे, तपस्या करने की शक्ति जो हमको जरूरत है भगवान की प्राप्ति करने के लिए उसका निर्माण होगा। और लास्ट क्या है, सत्य। जो भगवान के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी को भगवान की सेवा में यूज़ करेंगे, उसको यहाँ वहाँ जुए में नहीं उड़ाएंगे, तो सत्य हमारे अंदर वृद्धि करेगा और सत्य नष्ट हो जाएगा। तो ये चार धर्म के स्तंभ हैं जो बैल के चार पाए की तरह माना गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम आपसे बात नहीं कर सकते। तो भगवान के लिए सबसे बड़ी धमकी है ये। जब बाल बाल कहते हैं कि आपको खेल में नहीं लेंगे कल, आप चीटिंग कर रहे हो, तो इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर हिम। कंस आया, अरिष्टासुर आया, कोई थ्रेट नहीं उनके लिए, अचानक तुरंत मार देते हैं उनको, कोई डरते नहीं उसके लिए। लेकिन जब ग्वाल बाल गोपियाँ डांटते हैं तो डर लगता है उनको, क्योंकि प्रेम है वो, प्रेम, ये प्रेम की शक्ति है। और दिग्विजयी कंस को उन्होंने एक मुक्के से मार दिया और बाल से घसीट दिया उसको पूरे अखाड़े में, कोई डरने लगा उनको। इतने बड़े पहाड़ जैसे चाणूर मुष्टिक थे उनके सामने, इतने छोटे छोटे कोमल से बालक थे और पहाड़ समान वर्ल्ड चैंपियन रेसलर्स थे सामने उनके, उनको भी ऐसे हंसी खेल में मार दिया उन्होंने। लेकिन जब गोपियाँ बोलती नहीं बात करेंगे, यू कैन टॉलरेट दैट, उन्हें क्या करना होगा बताओ, क्या करना होगा, ऐसे कैसे चलेगा, आप बात करना बंद करेंगे तो हम जिएंगे कैसे। तो फिर वो कहते हैं कि बैल को मारने के अपराध के मुक्त होने के लिए आपको विश्व के सारे तीर्थों में दर्शन और स्नान करना पड़ेगा। बताओ कितने साल का प्रोजेक्ट हो गया ये। अरे अपनी वृंदावन की यात्रा 3 दिन चल रही है, तभी पूरे स्नान नहीं हो रहे हैं। तो वर्ल्ड के सारे स्थान में जाकर स्नान करना है, दर्शन करना है, तो पूरा जीवन ही बीत जाएगा। तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी ज़रूरत है सब जगह जाने की, मैं सब लोगों को ये बुला लूँगा। तो अपने बंसी से एक गड्ढा खोदते हैं और सभी पर्वतों को, नदियों को, कुंडों को, पवित्र स्थानों को, सभी नदी, सभी लोगों को बुला लेते हैं। कोई कुंड के रूप में है, कोई पर्वत के रूप में है, कोई सागर के रूप में है, कोई तालाब के रूप में, कोई नदी के रूप में, कोई ऐसे ही क्षेत्र के रूप में है, सभी प्रकार के तीर्थ वहाँ प्रकट हो जाते हैं 68,000। और उसमें अपना जल भी भरते हैं और खुद भी जाके आश्रय ले लेते हैं। और एक विशाल कुंड निर्माण होता है, उसका नाम है श्याम कुंड। उसमें श्री कृष्ण भगवान सारे गाल बाल स्नान करते हैं और फिर जैसे गोपियों ने कहा था वैसे शुद्ध होकर आते हैं वापस और कहते हैं कि अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने राक्षस के पक्ष में होकर हमसे विवाद किया है। यू टुक द साइड ऑफ द डीमन एंड फॉट विद अस, तो यू आर कंटामिनेटेड नाउ, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो आपको भी जाकर सब तीर्थों में स्नान करना होगा। वो कहते हैं बाय द वे, अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे बने बनाए कुंड में आप स्नान कर सकते हो। तो गोपियाँ क्या बोलती हैं कि आपके कुंड में आपने अरिष्टासुर को मारने का पाप जो है वो छोड़ दिया है, उसमें हम नहीं स्नान करेंगे। इट्स अ कंटामिनेटेड कुंड, वो दूषित कुंड हो गया ना, आपने जो पाप किया वो पाप वहाँ पर छोड़ा है अपने स्नान करके, तो हम लोग अपना कुंड बनाएंगे और अपना स्नान करेंगे। तो उन्होंने वहाँ से लेकर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जो है मानसी गंगा है, वहाँ से मानसी गंगा का पानी लेने के लिए लाइन लगाया उन्होंने। इतनी सारी हजारों गोपियाँ मटका लेकर खड़ी हैं, वहाँ से एक पहली गोपी मटका निकाल कर किसी को दे रही है, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको, वो फिर मटके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऐसे करके सबके पसीने निकलते हैं। सब लोग श्रम कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। और जितने तीर्थ आए थे 68,000, वो सब हाथ जोड़े खड़े वहाँ कि राधा रानी हमको भी सेवा दो, हम भी आपके सेवक हैं, इतने दूर से आए हैं, अगर आप कहें तो आपको इतनी मेहनत क्यों करते हो, हम भी आपके गड्ढे में डाल सकते हैं। फिर राधा रानी ने क्या किया, कुछ कंगन तोड़ के, वो कंगन के टुकड़ों से सब गोपियों ने गड्ढा खोदा उसी के बाजू में और जल डाल रहे हैं। बहुत स्लो प्रक्रिया चल रही है। फिर श्याम सुंदर जी आते हैं, बताते हैं अरे गोपियों, अरे राधिका रानी, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो, इतने सारे भक्त हाथ जोड़े बेचारी सेवा की याचना कर रहे हैं, कुछ सेवा का मौका दो। तो फिर वो हाँ कह देती है, तुरंत सारे तीर्थ जो है वो प्रवेश करते हैं और एक सुंदर विशाल कुंड बनता है, उसका नाम क्या है, राधा कुंड। और जब वो जल होकर राधा रानी उसमें स्नान करती है तो कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये कुंड जो है वो मुझे जितनी राधा रानी प्रिय है उतना ही ये कुंड प्रिय है। इसके अंदर जो जल है वो जल नहीं है, वो राधा रानी का द्रव रूप प्रेम है। स्वयं राधा रानी का जो प्रेम है वो द्रव रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, और जो भी इसमें स्नान करेगा वो जितनी मुझे राधा रानी प्रिय है उतना ही प्रिय हो जाएगा। ऐसा वरदान भगवान ने राधा कुंड को बनते हुए दिया। तो वो राधा कुंड और श्याम कुंड हम आपको भी ले जाने वाले हैं। वो बहुत रूप गोस्वामी के अनुसार विश्व की सबसे पवित्र स्थली है वो, द टॉप मोस्ट एंड द प्योरेस्ट ऑफ द होली प्लेस ऑफ ऑल द क्रिएशन ऑफ कृष्णा इज राधा कुंड। भगवान को इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रिय पृथ्वी है, बस पृथ्वी से ही गौलोक का मार्ग निकलता है, स्वर्ग से नहीं निकलता है। स्वर्ग में केवल भोग होता है, और वहाँ से आप गौलोक जाना है तो आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसी बिल्डिंग है 10 मंजिल की है और 2 मंजिल बेसमेंट के है और 1 ग्राउंड फ्लोर है, और आप 9वें मंजिल पे हैं और आपको बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए, तो कहाँ जाना होगा आपको? ग्राउंड फ्लोर पे आना ही पड़ेगा। अगर आप बेसमेंट में हो और आपको घर जाना है तो कहाँ जाएंगे? ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। 10वें मंजिल में होंगे और घर जाना है तो कहाँ जाएंगे? ग्राउंड फ्लोर पे। 3रे मंजिल में तो कहाँ जाएंगे? कूदेंगे, छोटा सा अंतर है तो नहीं ना। तो वेर एवर यू आर, इफ यू वॉन्ट टू गेट आउट यू हैव टू कम टू ग्राउंड फ्लोर। कहीं भी से कहीं से आप कूद नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये 14 भुवन के ब्रह्मांड में अर्थ ग्राउंड फ्लोर है, 6 बेसमेंट है नरक लोक, और 7 मंजिलें हैं स्वर्ग लोक की। कहीं से भी आपको ब्रह्मांड से बाहर निकलना है, मुक्त होना है, तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे आना है, वो है अर्थ पृथ्वी लोक। इसलिए भगवान को इन 14 भुवन में पृथ्वी बहुत पसंद है, पसंद ही लाइक्स इट वेरी मच, इट्स डियर टू हिम। पृथ्वी लोक में उनको भारतवर्ष बहुत पसंद है। भारतवर्ष जो है वो संतों की भूमि है, इसलिए उनको बहुत प्रिय है। और भारतवर्ष में उनको क्या प्रिय है? श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम उनका घर है, उसमें कई प्रकार के वन हैं, उसमें 108 वन उनको बहुत प्रिय है। उन 108 में से भी छाटे हुए 12 वन उनको बहुत प्रिय हैं, उसमें से 5 जमुना के उस तरफ, 7 इस तरफ, और 12 वनों में से भी श्री वृंदावन जो है वो उनको अति प्रिय है। और श्री वृंदावन के अंदर जमुना जी, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना ये भी स्थित है, तो उसमें से भी उनको क्या प्रिय है? श्री गोवर्धन। उसमें जमुना जी प्रिय है, उससे भी अधिक गोवर्धन प्रिय है, और गोवर्धन के अंदर उनको राधा कुंड और श्याम कुंड सबसे अधिक प्रिय है। और राधा कुंड श्याम कुंड के अंदर भी राधा कुंड जो है, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप है वो, इसलिए वो बहुत अति 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 प्रिय है। राधा कुंड के किनारे पे निवास प्राप्त होना, कुछ क्षणों के लिए, कुछ घंटों के लिए, एक दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, या जिंदगी भर, जिसी प्रकार का क्षण से शुरू होता है और अनंत काल तक चलता है, ये इसमें से सारा चीज़ जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी भाग्य की बात है। बिना संतों की, राधा रानी की, भगवान की कृपा के बिना, गुरुदेव की कृपा के बिना राधा कुंड के किनारे कोई पहुँच नहीं सकता है। हम लोग कई बार यात्रा में आए हैं और कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है कि नहीं, वी कांट गो देयर नाउ, इट्स टू लेट, वी हैव टू गो बैक। तो ये जब उनकी इच्छा होती है, परमिशन होती है, तभी हमारी योजना ऐसे ऑटोमेटिक बन जाती है और हम लोग पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम लोग इसलिए नहीं पहुंचते हैं कि अरे इसका महात्म्य बताने का मौका ही नहीं मिला है, तो क्या लेके जाएंगे वहाँ पर, फ़ायदा क्या जाके? इट्स लाइक गोइंग टू सम अदर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, नो यूज गोइंग देयर। ऐसा भी कभी कभी होता है, बिकॉज अगर आपको बिना बताए किसी महत्वपूर्ण जगह में लेके जाएंगे और आप लोगों की भावना अगर सही नहीं होगी, गलत हो जाएगी, तो आपको वहाँ जाने के जो लाभ मिलने वाला है उसको भी नुकसान करके आप लौट के आएंगे। इसलिए वी हैव टू ओरिएंट पीपल ना। अभी आप प्रधानमंत्री के बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हो, यहाँ पर सिक्योरिटी ऐसी ऐसी होती है, यहाँ पर कपड़े ऐसे पहनते हैं, यहाँ पर शस्त्र का अलाउड नहीं है, यहाँ पर गन अलाउड नहीं है, यहाँ पर सब छोड़ के जाना पड़ता है, मोबाइल छोड़ के जाना होता है, कितने सारे नियम हैं, प्रेस से चलना है, यहाँ बैठना है, यहाँ उठना नहीं, कुछ हाथ लगाना नहीं है, कितने सारे नियम होते हैं। सीधे आपको छोड़ दिया अंदर तो आपको क्या लाभ होगा उसका? तो पूरा ओरिएंट करना पड़ता है कि आपको कहाँ जा रहे हैं, उसका महत्व क्या है और कौन रहता है वहाँ पर। उस तरह से राधा कुंड श्याम कुंड जो है पूरे ब्रज के अंदर, जैसे बरसाना है अंतरंग स्थान, वैसे राधा कुंड है। राधा रानी की असीम कृपा, असीम कॉन्सेंट्रेट, हाँ, संपृक्त कृपा जो है वहाँ उपलब्ध है। कहीं भी दर्शन हो सकते हैं उसके, उसके जल का स्पर्श जो है जीवन की अंतिम प्राप्ति है। रूप गोस्वामी समझाते हैं उपदेशामृत में कि राधा कुंड का निवास ये भक्त के जीवन का अंतिम स्टॉप है, रिजाइड एट द बैंक्स ऑफ राधा कुंड एंड टू वर्शिप राधा एंड कृष्ण। इसलिए प्रभुपाद जी जब पहली बार लेके गए थे तो उन्होंने किसी को वहाँ पर स्नान नहीं कराया, उन्होंने कहा आप लोग यहाँ पर उतर नहीं सकते जब तक हृदय पूरी वासनाओं से मुक्त नहीं होता है, तब तक राधा रानी के कुंड में आप प्रवेश नहीं कर सकते। आप दूर से प्रणाम करो, पानी को हाथ लगाओ, आपके पैर उसके अंदर नहीं लग सकते। लेकिन फिर भी स्नान करने का विधान भी दिया गया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं कि बाद में स्नान नहीं किया, बाद में अभी भी स्नान भक्त लोग करते हैं उसके अंदर, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा क्यों किया? रोक के उनको समझाया कि आप कितनी महत्वपूर्ण जगह में जा रहे हो, उसका एक महत्व क्रिएट करने के लिए उन्होंने उनको रोका, ताकि उत्सुकता और ऑ एंड रेवरेंस और आदर सम्मान उसके लिए मन में उत्पन्न हो जाए, ताकि उसका पूरा बेनिफिट भक्तों को प्राप्त हो जाए। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी जगह पर जाए और खाली हाथ लौट के आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऊपर से अपराध भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कई दिन तक रोक के रखा उनको। हम लोगों की यात्रा 86 में पहली बार यहाँ पर आई थी, 1986 में। आपको यकीन नहीं होगा 86 के बाद में हम हर साल वृंदावन में आते रहे, कहीं ना कहीं बहाने से कैंप में इधर उधर आते रहे। महाराज ने हमको स्नान करने का परमिशन नहीं दिया था। आचमन करो राधा कुंड, श्याम कुंड, फिर राधा कुंड, आचमन करो, प्रणाम करो और चलो, दैट्स ऑल यू कैन डू। 1998 में एक घंटा दो स्वामियों ने लंबा प्रवचन दिया, समझाया व्हाट इज दिस और कैसे आपको स्नान करना है। कुछ हजारों भक्तों की संख्या वहाँ पहुँच गई थी, क्या बताऊँ आपको, एक भक्त के मुख से एक आवाज़ भी निकली नहीं, मुँह से एक भी आवाज़ नहीं करना, केवल हरे कृष्ण महामंत्र, नो अदर टॉक्स, नथिंग, नो अदर साउंड, ओनली द नेम ऑफ द लॉर्ड और साइलेंस। और आपको स्नान कैसे करना है वो समझाया उन्होंने। वो फिर रात के अंधेरे में 7:30-8 o'clock के अंधेरे में 2000 भक्तों ने राधा कुंड, श्याम कुंड, राधा कुंड ऐसे स्नान किया 12 साल के बाद, इतनी यात्रा करने के बाद। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो गंभीर जो है ना, सीरियसनेस, ग्रेविटी ऑफ थॉट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू गो देयर, क्योंकि आप हमारे अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च कृपा में स्थान में जा रहे हैं। आप राधा रानी ऐसे ही कृपा बरसाती है, लेकिन जो सुयोग्य पात्र होता है उसको भी प्राप्ति होती है उसकी। ऐसा ही कोई जाएगा एरा गेरा पापी आदमी तो वो पूरा पाप भरकर लौट कर आएगा, वो ऐसा है वो। इसलिए चेतना कॉन्शियसनेस की तैयारी वहाँ जाने के पहले बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप जाएंगे, आप में से कोई भी मुंह से एक भी शब्द नहीं उच्चारण करेगा सिवाय भगवान के नाम के, और राधा रानी की कृपा की तीव्र प्रार्थना करते हुए आपको चलना है, इंटेंसली प्रेइंग फॉर राधा रानी मर्सी। इसके आगे आप जब जाते हो ना, उसको कहते हैं राधा कुंड घेरा, दैट मीन्स द एरिया ऑफ राधा कुंड। वहाँ पर राधा रानी सबसे अधिक दयालु भाव में रहती है। क्या बताऊँ आपको, दया कितनी कितनी प्रकार की होती है वहाँ पर, कैसी होती है। एक सुअर जो थी ना, शी पिग, वो एक बार मरी हुई, मतलब ऐसे ही पड़ी हुई थी, राधा रानी सखियों के साथ जल्दी जल्दी जा रही थी लीला में, तो पैर को ठोकर लगती है, क्या है, तो ललिता कहती है कि अभी एक जो सुवर्णी है उसका शरीर टूटा है। तो राधा रानी कहती है ले लो उसके अपने पार्षद में ले लो। इमीडिएटली शी दैट शी पिग हु डाइड, शी बिकेम अ गोपी एंड जॉइन राधा रानी इन हर पर्सनल एंटराज। इस प्रकार की कृपा यहाँ पर उपलब्ध है। एक दिन वहाँ पर एक और एक सुवर्णी थी जो वहाँ पर डोल रही थी, उसके पास एक स्थान है शिवखोर नाम का, जहाँ शिव जी ने बैठ कर तपस्या किया राधा कुंड के घेरे में बैठ कर। उधर भी शिवकुंड, शिव जी का एक कुंडेश्वर महादेव करके स्थान है, हर पवित्र स्थान पर शिव जी एक तो रक्षण करते हैं, एक तो खुद की तपस्या भी करते हैं, दोनों तरफ का काम करते हैं, सेवा भी करते हैं और साधना भी करते हैं। तो उधर शिवखोर में वो जो सुवर्णी थी उसको कुछ बच्चे तंग करने लगे, इतना तंग किया, भगाया, मारा उसको, तो ये वो बिल में घुस गई, किसी एक होल में घुस गई। तो बच्चों ने क्या किया, उसके ऊपर लकड़ी वगैरह रख के आग लगा दिया। तो वो सुवर्णी चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ बचाओ, तो राधा रानी वहाँ पर राधा कुंड पे विहार कर रही थी, उसके कान में किसी की चीख आई, तो ललिता जी को कहती है जाके देखो कोई पुकार रहा है। तो ललिता जी आके देखते तो सुवर्णी को बच्चे लोग तंग कर रहे हैं और आग लगा दिया, ऊपर से अंदर बिल में घुस गई है वो। तो ललिता जी सबको भगा देती है बच्चों को, वो आग निकाल के वो सुवर्णी को फ्री कर देती है और राधा रानी के पास में लेके आती है। राधा रानी को देखते ही उसका पूरा दुख शांत होता है और तुरंत राधा रानी उसको अपने गोपी वृंद में प्रवेश कराती है। कैन यू इमेजिन, कहाँ सुवर्णी कहाँ गोपी, सच अ बिग ट्रांजिशन। लेकिन ये सब राधा रानी की कृपा से हो सकता है। अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, अचिंत्य जो घटनाएं हैं वो हमारे जीवन में हो सकती है अगर हम कथा में नहीं सोएंगे और कथा सुनेंगे। देखो उनको जगा लो, राधा कुंड जा रहे हैं और सो रहे हैं, कैसे होगा हमारा। इसलिए प्रभुपाद जी ने वो सब लोगों को मना कर दिया था कि यू नो वी हैव टू हैव राइट कॉन्शियसनेस टू अप्रिशिएट एंड टू अचीव व्हाट दैट प्लेस कैन गिव यू। इफ यू आर नॉट रेडी टू अचीव एंड एक्सेप्ट व्हाट दैट प्लेस कैन गिव यू, यू विल नॉट बी रिसीविंग दैट व्हाट दैट प्लेस कैन गिव यू। एंड अगर अपना मन कहीं गलत स्थिति में है और वहां पहुंचते हैं तो आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, लेकिन जो है वो भी खो जाएंगे आप। ऐसा है ड्यूअल नेचर ऑफ द होली प्लेस। तो इसलिए तो मैं क्या कह रहा था, तो वो सुवर्णी को भी उन्होंने गोपी का रूप दे दिया और राधा कुंड पे राधा रानी अपनी गिनी चुनी बहुत प्रेम की लीलाएं वहां पर करती है। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण भगवान जो है ना वो बहुतांश गेम में राधा रानी पर ओवर पावर करते हैं, मतलब हरा देते हैं, उन्हों चिढ़ाते हैं उनको, उन पर आतंक करते हैं, ये ओवरवेल्म सर। लेकिन एक गेम ऐसा है जो उसको कहते हैं चौसर का खेल, हाँ वो खेल में राधा रानी उनको हरा देती, तो सारा जो उसका गुस्सा है ना, यहाँ हारी वहाँ हारी यहाँ पर परेशान कर दिया, वो सब वो गेम में उसको उसको कहते हैं पाशा खेल। पाशा खेल नहीं, बंगला में कहते हैं पाशा, यानी वो पाशा फेंकते हैं ना और वो चौसर में गेम खेलते हैं। तो वहाँ पर एक घाट है पाशा खेला घाट, दोपहर में वो 11:48 पर वहाँ पहुँचती है, 11:48 एवरी डे। वहाँ पर एक पंच पांडव तीर्थ है, वहाँ पर घाट है, वहाँ पर वो स्नान करती है और वहाँ से घूमते हुए पाशा खेला घाट पे आती है। अब राधा और कृष्ण वहाँ पाशा खेलते हैं और वहाँ पर राधा ने उसको हरा देती, सब गोपियाँ ताले बजाकर हंसती हैं। वहाँ पर जब रघुनाथ दास गोस्वामी इसका जीर्णोद्धार कर रहे थे तो वो कई जगह सीधा कर रहे थे, काट रहे थे वगैरह वगैरह, तो युधिष्ठिर महाराज उनके सपने में आए, उन्होंने कहा हम पंच पांडव राधा कुंड श्याम कुंड के किनारे तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं वृक्ष के रूप में, इसलिए हमें मत काटना। इसलिए दास गोस्वामी ने वहाँ पर काटने का काम बंद कर दिया और जिगजैग कुंड बनाया, ऐसे वो वृक्षों को ऐसे रख के उसके अराउंड कुंड बनाया। इसलिए श्याम कुंड जो है वो जिगजैग है, राधा कुंड बहुत चौकोनी है। राधा कुंड के बीच में भी स्वर्ण कमल है अदृश्य रूप में, वहाँ पर युगल जोड़ी विराजते हैं, सब सखियाँ उनकी सेवा करते हैं, बहुत दिव्य दृश्य है वहाँ पर। वहाँ पर नित्यानंद की पत्नी जानमा देवी जो थी ना उनका निवास भी है उसी घाट, राधा कुंड के घाट पर। रघुनाथ दास जी का समाधि है जिन्होंने अपना जीवन का अर्धा काल यहाँ पर महाप्रभु जी के जाने के बाद में वहाँ बिताया और वहाँ बैठ कर फिर महाप्रभु जी की कथा किया उन्होंने पूरा। वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसको नोट किया और बचा हुआ जो फर्स्ट हाफ का लाइफ का नोट्स था वो मुरारी बुक्ता के नोट से लेकर चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का लेखन जो है, मैंने आपको वर्णन किया अभी उसका, वो ग्रंथ का लेखन राधा कुंड के किनारे में हुआ है। इतना बड़ा शास्त्र, प्रेम का शास्त्र जो है, वो राधा कुंड के किनारे में बैठकर उन्होंने लिखा 90 की वृद्ध अवस्था में, जब आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन प्रेम के अश्रु बह रहे थे उनके ग्रंथ में, कई स्याही के अंदर अश्रु की भी पाए गए थे हस्तलिखित में। सब संतों ने, जितने भी संत हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने प्रधान आचार्य हैं, सब लोग राधा कुंड में भजन किया हुआ है। हर एक बड़े बड़े आचार्य का राधा कुंड पे कुटी है, भजन बैठक है, बैठक स्थली है, मतलब विश्व के सभी संप्रदायों के सभी संतों की भजन स्थली है वो राधा कुंड। तो हमें भी उसी भाव से वहां पहुंचना है। और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे राधा कुंड अपना वृंदावन धाम में आए थे तब राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त हो गए थे, तो महाप्रभु चैतन्य ने जहाँ आज श्याम कुंड है उसके किनारे पे एक पेड़ के नीचे बैठकर, तमाल पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया था, ध्यान किया था और उस ध्यान में उनको दर्शन हुआ राधा कुंड और श्याम कुंड का और वहीं पर उन्होंने उसको प्रकट कराया। उसी जाकर मढ़ के अंदर स्नान किया, उस मढ़ को अपने शरीर पर मला और वहाँ पर स्नान किया और गौर हरी बोल नृत्य किया, तब ब्रजवासियों ने समझ गए कि ये राधा कुंड श्याम कुंड है। फिर दास गोस्वामी ने उसका बनवाया उसको पूरा, उसका नाम कंकण कुंड और बंसी कुंड था पहले, श्याम कुंड और राधा कुंड जो है, बड़ा सुंदर इतिहास है उसका। और माधवेंद्रपुरी जो कल्पवृक्ष के गोलोक के अवतार है, उन्होंने वहाँ भजन किया हुआ है, छह गोस्वामी ने वहाँ भजन किया हुआ है। और उसका गांव का नाम है अरिष्टग्राम, क्योंकि वहाँ पर अरिष्ट सूर ने हमला किया था। तैसा वो सुंदर स्थान है राधा कुंड और श्याम कुंड, और नित्यानंद प्रभु ने भी वहाँ पर भजन किया हुआ है। और हर गोस्वामी का मंदिर है, हर गोस्वामी के विग्रह वहाँ पर विराजमान हैं, सब लोग ने वहाँ पर रहकर भजन किया है। और क्या बताएं, राधा कुंड तो देखने के लिए आपको एक पूरा दिन लगेगा, ओनली वन प्लेस की सारी लीलाएं, सारे स्थानों के क्या क्या हुआ है तो समझना है तो वहाँ पर आपको एक पूरा दिन लग सकता है। फिर भी एक बात आपको बताता हूँ मैं, जब राधा कुंड श्याम कुंड को उत्खनन कर रहे थे ना, ही वॉज एक्सकेवेटिंग टू रेनोवेट, तो उस समय एक पत्थर पर जब घाव हुआ कुलाड़ी का, तो खून ऐसे स्प्लैश हो गया उसमें से बहुत ज़ोरदार, तो सब वर्कर डर गए एकदम, पूरा भाग के स्वामी जी के पास, स्वामी जी पत्थर से खून की लकीर निकल रही है, स्वामी जी भाग के आ गए, काम रोक दिया। तो रात को स्वप्न में गिरिराज गोवर्धन स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि आपके कार्यकर्ताओं ने मेरे जिह्वा पर आघात किया है, उसको निकालो और एक जगह स्थापन करो मंदिर में। तो फिर उन्होंने उस शिला को निकाल कर स्थापन किया, उसका नाम है जिह्वा मंदिर। फिर वो जो मंदिर बन रहा है, तभी ब्रजवासी आकर उस पर कपड़े भी धो रहे हैं और घोड़े भी धो रहे हैं और गाय भी धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो दास गोस्वामी ने समझा कि ये तो इतना पवित्र स्थान है, ये कपड़ा धोने का स्थान नहीं है, तो वंदन करने का पूजन करने का स्थान है, तो लोगों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कुआं खोदा वहाँ पर, वो कुआं खोदते हुए वो जिह्वा पर आघात हुआ था, फिर वो जिह्वा को स्थापन किया और कुआं खोदा और ब्रजवासियों के लिए वहाँ पर धोने खोने की व्यवस्था किया। तो कुआं भी वहाँ पर गोपी कुआं नाम है उसका, उसके सामने माधवेंद्रपुर जी की बैठक है, राधा गोविंद जी का मंदिर है। प्रभुपाद जी के पिताजी गुरु जी के पिताजी, तीन पीढ़ी का घर था, क्योंकि प्रभुपाद जी के जो पिताजी थे, सॉरी गुरु जी थे, उनके पिताजी अंग्रेजों के ज़माने के बड़े मैजिस्ट्रेट थे, टॉप आज के होते ना, क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस, वैसे वो ब्रिटिश के ज़माने के थे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बड़े अमीर भी थे और बड़े संत भी थे वो, तो उन्होंने अपनी कुटिया राधा कुंड किनारे में बिठाई है, उधर उन्होंने भी निवास किया है। फिर उनके पुत्र ठाकुर भक्ति सुदान जी ने भी निवास किया है, उनका घर अभी भी वहाँ पर मेंटेन्ड है। और प्रभुपाद जी ने भी राधा कुंड की बहुत महिमा गाई है। और क्या बताएं आपको, फिर घूम के आएंगे तो तमाल तला मिलेगा आपको, तो श्याम कुंड, राधा कुंड, इस तरह से बहुत सारे पवित्र स्थली उसके आसपास हैं। जब राधा कुंड बना, राधा जी ने अपना कुंड बनाया, तो ललिता, विशाखा आदि आठ सखियों ने अपना भी कुंड बनाया। अभी उसमें से केवल ललिता कुंड वहाँ पर है, बाकी सब कुंड लुप्त हो गए हैं। समय के अनुसार क्या करें उसको, जैसे कमल दल में आठ कमल होते हैं, वैसे दल होते हैं, वैसे राधा कुंड के भी आठ जगह पर सुंदर कुंड बनाए गए सखियों के, एक श्याम जी का, एक राधा जी का, और उसमें आठ और कुंड बनाए गए। तो जीव गोस्वामी ने भी वहाँ पर भजन किया हुआ है, वो रूप सनातन के बाद में प्रधान आचार्य बने, उनका भी भजन कुटी वहाँ पर है। राधा दामोदर जी विग्रह विराजमान है वहाँ पर, ललिता कुंड के सामने है वो। इस तरह से राधा कुंड का चक्र चलना, प्रदक्षिणा करना, ये विश्व की परिक्रमा करने के बराबर है, क्योंकि विश्व के, मैंने क्या बताया नियम क्या था, विश्व के सारे तीर्थों का दर्शन और स्नान करना है आपको, और वो सारे दर्शन करने के वाले जो तीर्थ हैं वो सब लोग वहाँ पर विराजमान हैं। इसका मतलब राधा कुंड की परिक्रमा करने का और भी अर्थ ये है कि हम पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं सबको प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो कितना गंभीर होना चाहिए हमको। अब यहाँ वहाँ की बातें करेंगे, अरे क्या यहाँ पर टॉफ़ी मिल रही है, क्या वो लस्सी मिल रही है, क्या सब करके जाएंगे तो क्या लाभ होगा आपको। इसलिए भगवान का नाम जपते हुए शांति से एक साथ आगे पीछे नहीं करना है, एक साथ चलना है, मौन रख के भगवान को पुकारते हुए, राधा रानी को पुकारते हुए एक प्रदक्षिणा पूरी करनी है, फिर आके बस में बैठना है। ठीक है, मंजूर है। जय जय श्री राधे श्याम।